अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट वन है नावल बेबाकों की तलाश। ये नावल नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पेशकश करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, मुसन्निफ इब्ने सफी, आवाज हुमा निहाल। मजीद कुतुब के लिए 0300-291-9600 और 0321-213-8225 पे रब्ता कीजिए। तो आइए सुनते हैं पार्ट वन। पेशरस, जोंक की वापसी और जहरीली तस्वीर के बाद बेबाकों की तलाश मुलाहिजा फरमाइए। ये इस सिलसिले की आखिरी किताब है। जोंक की वापसी मादाम निशिका की मुकम्मल कहानी थी। तहरीली तस्वीर में प्रोफेसर राशिद का किस्सा था। बेबाकों की तलाश में सबीहा की दास्तान और अंजुमन का तरीक़ेकार मुलाहिजा फरमाइए। मुझे यकीन है कि सबीहा का किरदार पसंद किया जाएगा। वो एक हल्की किस्म की अज़ियत पसंदी की शिकार है। दूसरों को जुल्लाहट में मुब्तला करके मसरूर होना उसकी फितरते सानिया बन चुकी है। सिंह ही भी उस कहानी में जहनी जंग के माहिर की हैसियत में नजर आएगा। इमरान और वो दोनों ही एक दूसरे की ताक में थे, इसलिए शुरू से आखिर तक जहनी जंग होती रही है। जहनी जंग में बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती या ठाए ठाए का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर पढ़ने वाले इसी धूम धड़क्के के मुंतजिर रहे होंगे, क्योंकि ये इस सिलसिले में आखिरी मुकाबला है। कहानी खत्म करने के बाद आप सोचेंगे कि कई मामलात की वजाहत नहीं की गई। दीदा और दानिश्ता ऐसा हुआ है। कहानी की तकनीक उसी की मुतकाजी थी कि कुछ सवालात के जवाब पढ़ने वाले खुद ही मरतब करें। अक्सर पढ़ने वाले बाज बहुत पुराने और गैर अहम किरदारों की वापसी के लिए मुतालबे करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में एक साहिबा ने लाशों का आबशार वाली कंवल की वापसी की फरमाइश की है। इस सिलसिले में क्या अर्ज किया जाए? वैसे अब अगर कंवल वापस भी आई तो आप बोर होकर रह जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कम अज कम 7 अदद बच्चों की फौज भी होगी। अब वो इतनी जिंदा दिल और कलंडरी नहीं रही। बच्चों को हर वक्त झिड़कने और आंखें दिखाते रहने की वजह से चेहरे की शादाबी और शोखी रुखसत हो चुकी है। शौहर पर तंज करते रहने की बिना पर आवाज में जहरीलापन पैदा हो गया है। कई कई दिन लिबास तब्दील नहीं करती, ज्यादातर बावर्ची खाने में सर खपाती रहती है। भला बताइए क्या हाल होगा आपकी जमालियाती हिस्स का जब उसे बर्तन मांजने देखेंगी? और उस वक्त तो आप आंखें ही बंद कर लेंगी जब वो बर्तन मांज चुकने के बाद हाथों को तौलिए से खुश्क करने की बजाय कमीज के पीछे दामन पर फेरती नजर आएगी। ऐसी ही बहुत सी बातें जिनसे आपका जौके नजर मजरूह हो सकता है। इसलिए खास किरदारों के अलावा दूसरे किरदार नए ही चलने दीजिए। वैसे अनवर और रशीदा के सिलसिले में आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। अरसे से सोच रहा हूँ कि अनवर और रशीदा का भी एक जखीम नावल पेश किया जाए, लेकिन कब? देखिए कब मौका मिलता है। इब्ने सफी। नाक में दम कर रखा था घर भर का। वो ऐसी ही थी, एमए के पहले साल में पढ़ती थी, फलसफा ले रखा था। बाप आजाद ख्याल और जिद्दत पसंद थे और माँ अव्वल दर्जे की कदामत पसंद। नकाब डाले बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी और शौहर पर खार खाती थी कि बेटी को इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है। सबीहा ने उन्हें इतना परेशान किया था कि करीब करीब ममता के जज्बात ही फना होकर रह गए थे और अब वो उनके लिए एक ऐसी हस्ती बनकर रह गई थी जिसकी सूरत देखते ही गुस्सा आ जाना लाजमी था। बाप कभी किसी मसले में दखल नहीं देते थे। कुछ भी हो रहा हो, उनके कान पर जू ना रेंगती। सबीहा की शोखियों पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते थे। कभी उससे किसी बात की बात पुरस नहीं की थी। अगर वो अपने किसी बॉयफ्रेंड को भी घर पर बुला लेती तो शायद उन्हें एतराज ना होता। वैसे सबीहा ने कभी ऐसा नहीं किया था, था ही नहीं कोई बॉयफ्रेंड। वो तो महज अपनी माँ और नानी को जलाने के लिए किसी सहेली के भाई का तस्करा ले बैठती। वो चीखती चिल्लाती और सबीहा बड़ी संजीदगी से कहती, अरे बस दोस्ती है उनसे, कोई मेरे आशिक थोड़ा ही है। माँ लफ्ज आशिक पर हजारों सलावाते सुनाती और कहती, अरे कमबख्त, ये तू बाजारी औरतों के अंदाज में क्यों बातें करने लगती है। इस पर वो बड़े फलसफियाना अंदाज में उन्हें समझाती कि आशिक को आशिक ही कहेंगे, नाश्ता दान नहीं। वैसे अगर नाश्ता दान कहने से ये मफहूम पूरा हो जाए तो वो मजनू लैला का आशिक था कहने की बजाय मजनू लैला का नाश्ता दान था भी कह सकती है। ऐसी बातों पर उन्हें उस जोर से गुस्सा आता कि उनकी जबान ही बंद हो जाती। और फिर नानी जो शुरू करती गाली और कोसने तो हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ जाते। नई नई इत्तलाहें सुनने में आती, वो आधी उर्दू और आधी पोरबी में वैसे भी गुफ्तगू करती। गुस्से की हालत में पोरबी और उर्दू कुछ इस तरह गुड़मुड़ होती कि एक तीसरी जबान आलमे वजूद में आ जाती जिसे शायद वो खुद भी ना समझ पाती। सबीहा दूसरों को चिढ़ाने में एक खास किस्म की लज्जत महसूस करती थी। जब किसी को अपनी बातों पर झुंझलाहट में मुब्तला देखती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे सारे जिस्म में हल्की हल्की सुरूर अंगेज सी गुदगुदी हो रही हो। जिस दिन उसे कोई ऐसा मौका नसीब ना होता, बुझी बुझी सी रहती, किसी काम में दिल ही ना लगता। लोगों को झुल्लाहट में मुब्तला करने के लिए नई नई हरकतें करती, ये सोचे समझे बगैर कि उनका अंजाम कहीं किसी हादसे की शक्ल में ना जाहिर हो। आज तो ऐसी हरकत कर गुजरी थी कि जिसकी बिना पर किसी भी कुंवारी लड़की की शामत बिला इल्मो इत्तला आ सकती थी। अपने फर्जी आशिक की तरफ से खुद ही एक खत लिख डाला था। कई तरह के अंदाजे तहरीर पर कादिर थी, लिहाजा माँ के धोखा खा जाने में कोई शुबा ही नहीं था। ये खत ऐसी जगह रखा गया जहाँ माँ या नानी की नजर जरूर पड़े। उसने अपने फर्जी आशिक की तरफ से लिखा था, हद से ज्यादा प्यारी सबीहा, तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं रही। तुम 3 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? मुतवाते 3 रातों से जाग रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। जिस दिन तुमसे मुलाकात नहीं होती, किसी काम में जी नहीं लगता। तुम्हारे घर आता मगर तुम पहले ही बता चुकी हो कि वालिदा साहबा बड़ी जल्लाद हैं, लिहाजा हिम्मत नहीं पड़ती। वैसे क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे बंगले की कंपाउंड की दीवार फलांग कर अंदर आ जाऊं? भाई मैं तो आज रात को यही करूंगा, ख्वाह कुछ हो। 11 बजे रात को कंपाउंड ही में मिलना। तुम पहले ही बता चुकी हो कि तुम्हारे यहाँ कुत्ते नहीं हैं, फिर क्या डर है किसी का? कानो कान खबर ना होगी। वैसे मुझे इसका इल्म है कि तुम्हारे पापा दौरे पर गए हुए हैं, फकत तुम्हारा अख्तर। बहरहाल खत माँ के हाथ लगा, पढ़कर सन्नाटे में रह गई। वो छुपकर उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर तक वो सर थामे बैठी रहीं, फिर अपनी माँ के पास गईं। सदमा भी था और गुस्सा भी, दोनों में कुछ खुसर फुसर हुई। और फिर सबीहा ने दोनों के रोने की आवाज सुनी। बड़ी भी तो बाकायदा बैन कर रही थी, लेकिन क्या कह रही थी ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता अपने मुंह में दुपट्टा ठूस ठूस कर हंसी रोकने की कोशिश करती रही। छोटे भाई बहन स्कूल गए हुए थे, वरना पूरा बंगला मातम कदा बनकर रह जाता। वो खुद आज कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मूड नहीं था। एक घंटे बाद दोनों खवातीन कमरे से बाहर आई थीं। दोनों की आंखों पर वरम सा आ गया, नाकें सुर्ख हो रही थीं। सबीहा ने दूर से देखा और कनाई काट कर दूसरी तरफ निकल गई। डर था कि सामना होने पर उसे हंसी ना आ जाए। वो तो उसकी मुंतजिर थी कि अब वो दोनों इस पर गर्जें बरसेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाम तक उन्होंने उससे कोई बात ना की, बस कहर आलूद नजरों से घूरती रही। अलबत्ता सबीहा ने महसूस किया कि तीनों मुलाजिमों को कुछ खास किस्म की हिदायत दी जा रही हैं। वो समझ गई कि दोनों खवातीन की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होगी। फिर हंसी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। शायद वो दोनों उसके ख्याली दोस्त को घेरने की स्कीम बना रही थीं। उसने सोचा मजा आएगा। तीनों मुलाजमीन 11 बजे रात तक पाए बाग में छुपे बैठे रहेंगे और ये दोनों बार बार बरामदे में निकल कर देखेंगी कि शिकार फंस गया या नहीं। छोटे भाई बहन स्कूल से आए तो घर में सन्नाटा था। उन बेचारों को भी तश्वीश हुई होगी कि आज ये मछली बाजार कब्रिस्तान क्यों बन गया है। उनमें से शायद किसी ने माँ से पूछ भी लिया था के बाजी कहाँ हैं। बस फिर क्या था, शामत आ गई उसकी। चटाचट कई तमाचे पड़ गए, उसने चिंगारना शुरू कर दिया। फिर जो भी दरियाफ्ते हाल के लिए आया, दो चार हाथ उसने भी खाए। कान पड़ी, आवाज नहीं सुनाई देती थी। और सबीहा बड़े इत्मीनान से अपने कमरे में लेटी पढ़े हुए रसायल के इश्तिहारात पढ़ती रही। छोटा भाई जिसकी उम्र 12 साल थी, पतंगबाजी के शौक में मुब्तला होने की बिना पर पिटने से बच गया था। वो स्कूल से आते ही पतंग और चरखी संभाल कर छत पर जा चढ़ा था। बहरहाल हंगामा फर्द होने के बाद उसे भी फिक्र हुई थी कि आखिर इन सबों की पिटाई किस बिना पर हुई थी। माँ या नानी से तो पूछने की हिम्मत न पड़ी। पिटने वालों से पूछा, लेकिन वो वजह ना बता सके। आखिर सबीहा से ही पूछना पड़ा। कमबख्ती है तुम्हारी, सबीहा आंखें निकाल कर बोली। क्यों बाजी, मैंने क्या किया है? अगर मेरे बड़े भाई होते तो वो बेचारे क्यों पिटते? मैं नहीं समझा बाजी। अरे, मेरे बड़े भाई होते तो उन्हें ही मेरी शादी की फिक्र होती। पापा को तो नहीं है, मम्मी को इसका बड़ा कल्प है। कह रही थी कि अगर अनवर बड़ा भाई होता तो अब तक कभी की सबीहा ब्याही जा चुकी होती। उन हजरत को तो फिक्र ही नहीं है किसी बात की। लेकिन टिल्लू, पप्पू और गुड्डू क्यों पिट गए? वो तीनों कह बैठे थे कि हम जा रहे हैं बाजी के लिए दूल्हा ढूंढने। वाकई? सबीहा ने तहय्युर आमेज संजीदगी से पूछा। यस सर। अच्छा, तो जाओ। शाबाश, उसने सोचा। अब बराहे रास्त हंगामे के इम्कानात हैं। वो भी चुपके से उठकर भाई के पीछे पीछे चली आई। यहाँ भाई माँ से कह रहा था, आप ख्वामखा परेशान होती हैं मम्मी, पापा को फिक्र ना हो, मुझे तो है। काहे की फिक्र? वो झल्लाकर पलटी। बाजी की फिक्र? मैंने ढूंढ लिया है, चौधरी अल्लाह रखा, मवेशी खाने के मुंशी हैं। कबल इसके कि वो कुछ कहती, सबीहा ने चहक कर पूछा, अच्छा बड़ी बड़ी मूछें हैं या नहीं? शलवार पहनते हैं कि तहमद? ठहर जा तू। दफातन नानी जूती उतारने के लिए झुकी और वो उछलकर भागी। अब नानी और माँ दोनों उसके पीछे दौड़ पड़ी थी। वो कदकड़े लगाती हुई बरामदे से गुजरकर पाए बाग में चली आई और वो दोनों बरामदे ही में खड़ी हाँफती रह गईं। फिर आ गई शामत उस भाई की जिसे बहन की फिक्र थी। माँ ने उसे दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया था और सबीहा लॉन में औंधी पड़ी हुई बेतहाशा हंस रही थी। फिर रात तक हंगामा ही रहा था और तीनों मुलाजमीन पाए बाग के किसी गोशे में छुपे बैठे थे। माँ और नानी बार बार बैरोनी बरामदे तक जाती और फिर वापस आ जाती। सबीहा भी कभी कभी उनकी लाइलमी में इधर उधर झांक आती। फिर 10:30 बजे वो भी खुद को बेचैन जाहिर करने की कोशिश करने लगी। उन दोनों की दानिश में भी कई बार बैरोनी बरामदे तक गई और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। माँ और नानी उसे कहर आलूद नजरों से घूर रही थीं। फिर 11 बज गए और एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और उसकी माँ से बोला, बेगम साहब, वो बाहर फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, दीवार पर चढ़े तो पकड़ लें। सबीहा बराबर वाले कमरे से सुन रही थी। हंसी रोकने के लिए उसे मुंह में दुपट्टा ठूंसना पड़ा। नौकर को सरगोशियों में कुछ हिदायत मिली और फिर वो वापस चला गया। सबीहा ने सोचा कि अब उसे भी बैरोनी बरामदे की तरफ जाने के लिए बेताबी जाहिर करनी चाहिए। वो दबे पांव चोरों की तरह राहदारी की तरफ बढ़ी, लेकिन माँ और नानी सदर दरवाजे के दरमियान हायल नजर आईं। वो इस तरह ठटक गई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। कहाँ चली? माँ ने हाथ नचाकर जहरीले लहजे में पूछा। वो, अरे मम मतलब ये कि दिल उलझ रहा है, जरा टहलूंगी, उसने रुक रुक कर कांपते हुए कहा। बौखलाहट की बड़ी शानदार एक्टिंग कर रही थी। चल बैठ, वो हाथ झटक कर बोली, वरना आज खाल ही गिरा दूंगी। फिर देखूंगी बाबा जान मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। शह दे देकर सांड बना दिया है छछुंदर को। लैंग्वेज प्लीज मम्मी, उसने किसी कदर बुरा मानकर कहा। ठहर तो, लैंग्वेज प्लीज की बच्ची, वो हाथ उठाकर उसकी तरफ लपकी। फिर वो जो वहां से भागी तो अपने कमरे ही में आकर दम लिया। दरवाजा मुकफ्फल करके बिस्तर पर लौटने लगी। हंसी के मारे सांस नहीं समा रही थी, पेट दबा दबा कर हंसती रही। उधर बेगम साहबा कुछ दूर तो दौड़ी थी, फिर बैरोनी बरामदे की तरफ पलट गई थी। सबीहा सोचती और हंसती रही, कैसा छकाया। अब 12 बजे तक के लिए फुर्सत हुई और वो कमबख्त अमीराना जाने किस बेचारे को ताक बैठा है। इंतजार हो रहा है कि दीवार फांदे और वो उसे धर ले। पापा अगर मौजूद होते तो ये शरारत कामयाब ना हो सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि वो कई तरह के तर्ज तहरीर पर कादिर है। वो खुद ही उन्हें अपने कमालात दिखा चुकी थी। अगर पापा के सामने ये खत पेश भी किया गया तो वो इस किस्म की दूसरी तहरीर उनके सामने ही घसीट कर रख देगी। थोड़ी देर तक वहीं लेटी रही, फिर दरवाजा खोलकर झांका ही था कि एक बैग छोर सुनाई दिया। पकड़ लिया बेगम साहिबा, दोनों ने बयक वक्त हाँक लगाई थी। कहाँ है, कहाँ है? बेगम साहिबा ने बेसाख्ता पूछा। अमीरा ने सर पर चादर डालकर घसीट लिया था। गराजू, शाने चित तो हम लोग छाप बैठे। खोपड़ी पर चादर बांधकर गर्दन में गिरह लगा दी। ये भी ना देख सका होगा कि किसने चादर डाली और किसने घसीट मारा। फिर क्या किया, बंद कर दिया है साले को। सबिया ने सुना और हवास भागता हो गई। पता नहीं किसे पकड़ लिया कमबख्तों ने, वो भी बौखला कर दौड़ पड़ी। क्या बात है, क्या हुआ, उसने पूछा। अभी बताती हूँ, माँ ने दांत पीस कर कहा। फिर नौकर से पूछा, कहाँ है? बंद कर दिया है स्टोर में। किसे बंद कर दिया है, सबीहा भी झुंझला गई। नौकर ने बेगम साहिबा की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहे बगैर स्टोर रूम की तरफ झपटी चली गई। स्टोर रूम क्या अच्छा खासा रिहाइश का कमरा था, जिसमें फालतू काट कबाड़ और मोदी खाने का सामान भरा रहता था। सबीहा भी उनके पीछे ही पीछे चली आई। खिड़की की दूसरी तरफ एक सेहतमंद और वजिया नौजवान सलाखें थामे खड़ा अहमकाना अंदाज में पलकें झपका रहा था। उसकी जाहिरी आन बान देखकर बेगम साहेबा भी पल भर के लिए ठटकी। फिर खुद को संभाल कर सख्त लहजे में बोली, ये क्या हरकत थी? मैं भी नहीं समझ सका मोहतरमा। सबीहा उनके पीछे खड़ी वहशत ज़दा नजरों से उस आदमी को घूरे जा रही थी, जो काफी वजीहा होने के बावजूद भी परले दर्जे का अहमक मालूम होता था। तुम्हारा नाम अख्तर है? बेगम साहिबा उसकी नर्म गुफ्तारी पर शेर होती हुई धाड़ी। चलिए अख्तर ही समझ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तुम हमारे कंपाउंड में क्यों घुसे थे? मैं नहीं तो मैं तो घुसेड़ा गया हूँ जबरदस्ती कंपाउंड में। क्या बकवास है जी, उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने सर पर चादर डालकर मुझे इस हाल को पहुंचाया है। क्यों? बेगम साहिबा नौकरों की तरफ मुड़ी। जी घुसे नहीं थे तो घुस ही आते। बड़ी देर से फाटक के सामने फुटपाथ पर खड़े थे। सबिया का दिल और शिद्दत से धड़कने लगा। वो सोच रही थी कहीं पुलिस केस ना बन जाए, सारी शरारत धरी रह जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बहरहाल तुम अख्तर हो? जी हाँ मैं अख्तर हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, वो मुलाजिमों की तरफ मुड़कर बोली। मुलाजिम चले भी गए, लेकिन सबीहा वहीं खड़ी रही। बेगम साहिबा के अंदाज से ऐसा ही मालूम होता था जैसे उन्हें सबीहा की वहां मौजूदगी का इल्म ही ना हो। बेगम साहिबा मुकैद नौजवान को चंद लम्हे कहर आलूद आंखों से घूरती रही, फिर डपट कर पूछा, तुम सबिया को खतूत लिखते रहते हो? जी हाँ, उसने अहमकाना सआदतमंदी के इजहार में सर को जुम्बिश दी। सबिया का मुंह हैरत से खुल गया। क्यों लिखते हो? बेगम साहबा दांत पीस कर बोली, बस जी चाहता है। जी चाहता है कि बच्चे मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगी। अब जो कुछ भी हो, मैं तुम पर चोरी का भी इल्जाम लगा दूंगी। आप अपने हाथ से मेरा गला दबा दीजिएगा, मगर मैं तो लिखूंगा खतूत। चुप रहो कमीने जलील। जी अच्छा, अहमक ने फिर सआदत मंदी का इजहार किया। सबीहा का सर चकराने लगा। सिट्टी गुम हो गई। जिस अख्तर की तरफ से उसने खुद को खत लिखा था, उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन ये आदमी कौन है? ये क्यों इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले रहा है? इसकी भी परवाह नहीं कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यकबैग सबीहा जी कड़ा करके आगे बढ़ी और बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुमने कभी मुझे खतूत नहीं लिखे। कबल इसके कि वो कुछ कहता, बेगम साहिबा का उल्टा हाथ सबीहा के मुंह पर पड़ा और वो लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई। उसके बाद तो उसे पता ही ना चल सका कि वो दोनों हाथ बेगम साहिबा के थे या किसी मशीन के जरिए चलने वाले हथौड़े के, जो तड़ातड़ उस पर वार किए जा रहे थे। नानी पास ही खड़ी गालियों और कोसनों के डोंगरे बरसाती रही। बेगम साहबा जब उसे अच्छी तरह पीट चुकी तो ना जाने क्यों खुद ही रोना शुरू कर दिया और दूसरे रिहायशी हिस्से की तरफ चली गई। नानी भी उनके पीछे झपटी थी, लेकिन सबीहा फिर खड़ी होकर उस मकबूतुल हवास नौजवान को घूरे जा रही थी। मुझे इस पर हैरत नहीं है, नौजवान ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हुए कहा, मेरी मम्मी तो इनसे भी ज्यादा तेज हैं। तुम कौन हो? अख्तर, अख्तर अली सिद्दीकी। यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ खुद नहीं आया, लाया गया हूँ, किसी ने पीछे से सर पर चादर डालकर घसीट लिया। हमारे फाटक के सामने क्यों खड़े थे? अपने दोस्त चौधरी अब्दुल लतीफ का बंगला तलाश कर रहा था। दोपहर से ये वक्त आ गया। आदिलाबाद में उसके अलावा और किसी को नहीं जानता। तो तुम परदेसी हो? जी हाँ। यहाँ आओ, यहाँ आसपास कोई अब्दुल लतीफ नहीं रहता, सबीहा ने जहन पर जोर देते हुए कहा। फिर चौंक कर बोली, तुमने खामखा ये क्यों कह दिया कि मुझे खतूत लिखते रहते हो? नहीं तो, नौजवान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने पूछा था तुम सबीहा को खतूत लिखते रहते हो। मैंने कहा जी हाँ। ये क्यों कह दिया? मैं झूठ नहीं बोल सकता, मम्मी कहती हैं झूठे के मुंह से बरोज़े कयामत बदबू आएगी। मैं सबीहा हूँ, समझे? वो झुंझलाकर बोला बोली। ओ अरे वाह, नौजवान ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। बदिक्कत तमाम हंसी रुकी तो बोला, ला हौल वला कुव्वत, मेरी कजन का नाम भी तो सबीहा है, मैं उसे खतूत लिखता रहता हूँ। तुम वाकई अहमक मालूम होते हो, बिल्कुल घामड़। अब जेल चले जाओगे, देख लेना। सबीहा को उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। तब तो वाकई बहुत बुरा हुआ, नौजवान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। दोपहर से अब तक भूखा हूँ और ट्रेन में जेब कट गई, टिकट भी पर्स में था। टिकट कलेक्टर ने रिश्वत मांगी थी, कहाँ से दे था? आखिर उसने सामान रखवा लिया और कहने लगा, जाओ अपने दोस्त चौधरी अब्दुल लतीफ से पैसे लेकर आओ, तब सामान दूंगा। ओह, तो क्या तुम्हें सही पता नहीं मालूम अपने दोस्त का? एक बार पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए बस्ती का नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं महसूस की थी। और अब तो हर एक से पूछता हूँ कि जाऊं किधर को, मैं भूख के मारे दम निकल रहा है। मैं क्या करूं, यहाँ कुफल लगा दिया गया है और चाबी मम्मी के पास है। और डैडी कहाँ है? नौजवान ने खौफजदा लहजे में पूछा। डैडी होते तो इसकी नौबत ही ना आने पाती। मैं नहीं समझा। मैं क्या करूं, सबीहा मुस्तरबराना अंदाज में बड़बड़ाई। आप क्या करना चाहती हैं? आप एक गलत फहमी की बिना पर इस तरह पकड़े गए हैं, लेकिन मम्मी यकीन नहीं करेंगी। किस बात पर यकीन नहीं करेंगी? यही कि आप वो अख्तर नहीं हैं और फिर आपकी कोई कजन सबीहा भी है। बिल्कुल समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, आप मुझे यहीं बंद रहने दीजिए, लेकिन कुछ खिलवा तो दीजिए, वरना अब मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा। दफातन पुश्त से नानी की आवाज आई, ए लो, ये कमीनी तो खड़ी इससे बातें कर रही है, क्या फायदा हुआ? फिर उन्होंने तीनों नौकरों को आवाजें दी, जो दूसरे ही लम्हे वहां पहुंच गए। नानी उन्हें लेकर आगे बढ़ी और सबीहा को पीछे धकेलती हुई बोली, मारो सूरत हराम को। मार चुके सूरत हराम को, अजनबी नौजवान ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। मैं इतना उल्लू नहीं हूं, अंदर से दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी है, मारने से पहले इन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। उधर के दरवाजे की भी चिटकनी चढ़ा दी है। हाँ, नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकाया हिस्सा अगले पार्ट 2 में समाप्त फरमाइए।